अगर हम एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करें जहां कोई बहुत ही सम्मानित गुरु किसी बेबस और परेशान महिला को सरेआम कुत्ता कह दे,
तो पहली प्रतिक्रिया शायद बहुत गहरे गुस्से की होगी, मतलब या फिर बहुत ज्यादा निराशा की।
बिल्कुल। या फिर एक और घटना सोचिए जहां उफनती हुई नदी पार करते समय अचानक आपको महसूस हो कि आपके पैर नदी के तल पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर टिके हैं।
सुनने में तो ये किसी फैंटेसी नॉवल जैसा लगता है।
हाँ, है ना। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई पुरानी धूल भरी उबाऊ क्लास नहीं है। हम डॉक्टर क्रेग कीनर के मैथ्यू 14 से 16 के लेक्चर नोट्स में गोता लगाने वाले हैं।
और मैं कहूंगा कि ये स्रोत सामग्री इसलिए इतनी दिलचस्प है क्योंकि अक्सर हम प्राचीन ग्रंथों को बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से देखते हैं, जैसे सब कुछ एकदम साफ सुथरी श्रेणियों में बटा हो।
हाँ, लेकिन डॉक्टर कीनर के नोट्स उस पूरी ही तस्वीर को धुंधला कर देते हैं। मतलब हमारा मिशन आज सिर्फ एक धार्मिक पाठ का विश्लेषण करना नहीं है, हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे प्राचीन काल में एक छत की मुंडेर का नियम आज के सीट बेल्ट पहनने के नियम से जुड़ा हुआ है।
और ये भी कि क्यों सबसे ज्ञानी लोग अक्सर सबसे बड़े अंधे साबित होते हैं।
बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। शुरुआत उस घटना से करते हैं जो भौतिक विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती है, पानी पर चलना।
मैथ्यू 14 में यीशु का पानी पर चलना।
हाँ, आमतौर पर लोग इसे सिर्फ एक जादुई करतब मान लेते हैं भीड़ को खुश करने के लिए, लेकिन स्रोत के विश्लेषणात्मक नजरिए से इसके पीछे की असली कहानी क्या है?
इसका सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि यह महज कोई जादू नहीं था। अगर हम इसे उस समय के ऐतिहासिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सीधे तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट का एक बहुत ही गहरा संदर्भ था।
अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट से कैसे?
जैसे अय्यूब 9:8 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल ईश्वर ही समुद्र की लहरों पर चलते हैं, और फिर निर्गमन 33:19 में,
मतलब एक्सोडस में,
हाँ एक्सोडस में ईश्वर के अपनी महिमा के साथ गुजरने का जिक्र है। तो जब यीशु पानी पर चलते हुए आते हैं और कहते हैं कि मैं हूं, जिसे ग्रीक में ईगो एमी कहा जाता है,
ईगो एमी, राइट,
हाँ, तो वे सीधे तौर पर ईश्वर के उस प्राचीन पवित्र नाम का उपयोग कर रहे थे। वे बिना कुछ कहे सिर्फ अपने कृत्य से अपनी ईश्वरीय पहचान स्थापित कर रहे थे।
यहाँ मुझे एक बड़ी विडंबना दिखाई देती है। जब यीशु पानी पर चलते हुए आ रहे हैं तो उनके अपने ही शिष्य उन्हें देखकर भूत समझ लेते हैं और डर जाते हैं।
हाँ, वो घबरा गए थे।
जबकि स्रोत ये भी बताता है कि उस समय के लोग, विशेषकर यहूदी समाज, भविष्य के पुनरुत्थान या रेजरेक्शन में गहराई से विश्वास करता था। डैनियल के ग्रंथ में भी इसका जिक्र है।
बिल्कुल, डैनियल 12:2 में इसका स्पष्ट उल्लेख है।
तो फिर वे आत्माओं या भूतों से क्यों डर रहे थे? मतलब उन्हें तो पता होना चाहिए था कि आत्मा इस तरह से नहीं भटकती।
यह एक बहुत ही सटीक पॉइंट है, लेकिन शिष्यों का वो डर हमें मानव मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। किसी सिद्धांत को सिर्फ दिमाग से जानना एक बात है, लेकिन जब वो चीज भौतिक वास्तविकता बनकर आपके सामने खड़ी हो जाए
तो इंसानी दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता।
सही कहा। उनका डर यही दिखाता है कि वे अभी भी उस ईश्वरीय शक्ति की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे।
और यहीं पर पीटर की कहानी में एंट्री होती है। पीटर नाव से बाहर कदम रखता है और पानी पर चलने की कोशिश करता है,
जो कि एक बहुत बड़ा कदम था।
हाँ, अगर हम आज के जीवन से इसकी तुलना करें तो मैं सोच रही थी कि पीटर का उस सुरक्षित नाव से बाहर निकलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी किसी बहुत ही सुरक्षित नौकरी या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं।
ये उपमा बहुत सटीक है,
है ना। हम शुरुआत तो बहुत बड़े विश्वास के साथ करते हैं कि हाँ दुनिया बदल देंगे, लेकिन फिर जैसे हम हवा और लहरों को देखते हैं,
यानी दुनिया की असलियत,
हाँ मतलब EMI, किराया, जिम्मेदारियां, हम घबरा जाते हैं और डूबने लगते हैं।
बिल्कुल, विश्वास और वास्तविकता के बीच का ये संघर्ष सिर्फ प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। इसी को विस्तार देते हुए डॉक्टर कीनर आधुनिक दुनिया की कुछ असाधारण घटनाओं का उल्लेख करते हैं। उन्होंने इंडोनेशियाई मिशनरियों की वास्तविक कहानियों का जिक्र किया है जिनके इंटरव्यूज उन्होंने खुद लिए थे।
अरे हाँ, वो कहानियां पढ़ते समय तो सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर हम उन कहानियों की गहराई में जाएं तो वहाँ वास्तव में हुआ क्या था?
तो एक कहानी में एक मिशनरी टीम घने जंगल में थी और उन्हें एक उफनती हुई नदी पार करनी थी। बहाव बहुत तेज था। जब उन्होंने पानी में कदम रखा तो उन्हें लगा कि पानी सिर्फ उनके घुटनों तक ही है। उन्हें महसूस हुआ कि वे नदी के तल पर चल रहे हैं।
ओके, फिर
ये गांव वालों ने उन्हें अचंभित होकर बताया कि नदी का जलस्तर तो बिल्कुल कम नहीं हुआ था।
ओ माय गॉड,
वे लोग वास्तव में पानी की सतह पर चलकर आए थे।
ये तो विज्ञान के लॉजिक से बिल्कुल बाहर है। और उस स्रोत में एक दूसरी कहानी भी थी जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, जहां एक महिला ने अकेले ही वो नदी पार की।
हाँ, उस दूसरी घटना में सांस्कृतिक नियम एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। उस मिशनरी टीम में वो अकेली महिला थी और बाकी सब पुरुष थे।
अच्छा, तो उस विशिष्ट स्थानीय संस्कृति में किसी महिला का अजनबी पुरुषों के साथ हाथ पकड़कर नदी पार करना,
वो एक गंभीर सामाजिक अपराध माना जाता था। इसीलिए उस सांस्कृतिक मर्यादा का सम्मान करते हुए उसे वो नदी अकेले ही पार करनी पड़ी।
बाप रे, अकेले उस तेज बहाव में?
हाँ, उसने बस प्रार्थना की और नदी में उतर गई। उसे लगा कि पानी सिर्फ उसके टखनों तक है, लेकिन पार करने के बाद उसे भी यही बताया गया कि उसने पानी पर चलकर नदी पार की है।
अमेजिंग।
इन घटनाओं का मैकेनिज्म हमें ये समझाता है कि जब कोई व्यक्ति एक बड़े मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित होता है तो बाहरी बाधाएं अपने आप रास्ता दे देती हैं।
लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि यीशु का पानी पर चलना किसी बाहरी चमत्कार पर निर्भर नहीं था, है ना?
हाँ बिल्कुल, डॉक्टर कीनर स्पष्ट करते हैं कि यीशु के लिए ये उनका अपना स्वाभाविक अधिकार था।
तो अगर पानी पर चलने की घटना ये साबित करती है कि यीशु के पास भौतिक नियमों को तोड़ने का ईश्वरीय अधिकार था, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि उन्होंने इस अधिकार का इस्तेमाल इंसानी समाज के बनाए नियमों पर कैसे किया?
यहीं से तो असली विवाद शुरू होता है।
हाँ, क्या उन्होंने स्थापित धार्मिक परंपराओं को भी उसी तरह चुनौती दी? यहाँ से मैथ्यू 15 में नियम बनाम दिल की बहस शुरू होती है। फरीसियों की हाथ धोने की परंपरा, मतलब हम सभी जानते हैं कि हाइजीन बहुत जरूरी है, लेकिन वहां मुद्दा सफाई का नहीं था, है ना?
सफाई का उस विवाद से कोई लेना देना ही नहीं था। फरीसियों ने हाथ धोने को एक अत्यंत कठोर धार्मिक अनुष्ठान या रिचुअल बना दिया था। उनका मानना था कि अगर आप बिना एक विशिष्ट तरीके से हाथ धोए खाना खाते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध हो जाते हैं।
और यीशु ने इस व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया।
बिल्कुल, उन्होंने फरीसियों को आईना दिखाया कि कैसे लोग धर्म के नाम पर नियमों में लूपहोल खोज रहे थे।
ओहो, वो कॉर्बिन वाली प्रथा, मुझे लगता है ये हिस्सा आज के समाज के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये कॉर्बिन असल में काम कैसे करता था?
कॉर्बिन का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर को भेंट किया गया दान। मूसा की व्यवस्था के अनुसार हर व्यक्ति का यह परम कर्तव्य था कि वो अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करे और उनकी आर्थिक देखभाल करे,
जो कि बहुत बेसिक है।
हाँ, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया था। वे अपनी संपत्ति या धन को मंदिर के लिए समर्पित या कॉर्बिन घोषित कर देते थे।
अच्छा, तो अब चूंकि वो पैसा तकनीकी रूप से मंदिर का हो गया है
तो इसलिए वे उसका उपयोग अपने माता पिता की देखभाल के लिए नहीं कर सकते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि वे खुद उस संपत्ति का फायदा उठाते रहते थे।
मतलब ये तो बिल्कुल किसी आज के कॉर्पोरेट टैक्स लूपहोल की तरह है।
बिल्कुल वैसे ही। यीशु इसी बात पर क्रोधित थे कि नियमों के अंधे पालन के नाम पर मानवीय करुणा के मूल सिद्धांत की ही हत्या की जा रही है।
अगर हम गहराई से सोचे तो आज भी हमारी कई नीतियां या कानूनी व्यवस्थाएं बिल्कुल ऐसी ही हैं। हम नियम के शब्दों का पालन तो करते हैं लेकिन उसकी आत्मा को मार देते हैं।
सही बात है।
स्रोत में उस छत की मुंडेर वाले नियम का उदाहरण इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है।
हाँ, डॉक्टर कीनर का वो उदाहरण बहुत सटीक है। व्यवस्था विवरण 22 में, मतलब ड्यूट्रोनॉमी 22 में, ये नियम स्पष्ट रूप से लिखा था कि जब भी कोई नया घर बनाए तो उसकी छत के चारों ओर एक मुंडेरिया फेंस बनानी चाहिए। डॉक्टर कीनर अक्सर अपने छात्रों से पूछते हैं कि आज कितनों के घर की छतों पर मुंडेर है।
शायद बहुत कम के।
हाँ, उस समय की कृषि प्रधान संस्कृति में लोग अपना ज्यादातर समय छतों पर बिताते थे, तो मुंडेर जरूरी थी ताकि कोई अतिथि या परिवार का सदस्य गिर ना जाए। नियम सिर्फ मुंडेर बनाने का नहीं था, नियम का मूल सिद्धांत अपने पड़ोसी के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का था।
और इसीलिए ये आज के कारों में सीट बेल्ट के नियम से सीधा जुड़ता है। उस प्राचीन काल की छत की मुंडेर आज हमारी कार का सीट बेल्ट है।
बिल्कुल सही।
स्रोत ये आंकड़ा भी देता है कि सीट बेल्ट दुर्घटना की मृत्यु दर को 50% तक कम कर देता है। मतलब नियम का भौतिक रूप समय के साथ बदल सकता है, लेकिन जो सिद्धांत है, मानव जीवन की रक्षा और करुणा, वो शाश्वत रहता है।
और यहीं पर हमें मार्क और मैथ्यू के ग्रंथों के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। मार्क के गॉस्पल में यह स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है कि यीशु की इन बातों का अर्थ था कि सभी भोजन शुद्ध हैं।
हाँ, लेकिन मैथ्यू ने ये लाइन अपने पाठकों के लिए नहीं लिखी।
ये मुझे बहुत ही अजीब लगा।
अजीब क्यों? मतलब अगर यीशु ने सभी भोजन को शुद्ध कह दिया था तो मैथ्यू ने उसे सेंसर क्यों किया? क्या वो कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहे थे?
मैं कहूंगा कि ये छिपाना नहीं था, बल्कि अपने विशिष्ट पाठकों की संवेदनशीलता को समझना था। मैथ्यू के पाठक मुख्य रूप से यहूदी ईसाई थे।
ओके।
उनके लिए कोशेर भोजन करना सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं था, यह उनकी पीढ़ियों पुरानी पहचान और आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक था।
अगर मैथ्यू अचानक लिख देते कि सभी भोजन शुद्ध हैं, तो ये उनके पाठकों के लिए एक ऐसा सांस्कृतिक झटका होता जिसे वे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते।
समझी। लेकिन मैथ्यू जो संदेश देना चाहते थे वो ये था कि असली अशुद्धता बाहर से अंदर जाने वाले भोजन से नहीं आती, बल्कि इंसान के अंदर से बाहर आने वाले विचारों से आती है।
हाँ, डॉक्टर कीनर यहाँ अलेक्जेंड्रिया के प्राचीन यहूदी दार्शनिक फिलो का संदर्भ भी देते हैं, है ना?
हाँ, फिलो ने 100 से अधिक प्रकार की मानसिक और चारित्रिक बुराइयों की एक लंबी सूची तैयार की थी। यही बात कनानी महिला की कहानी में उभर कर आती है।
हाँ, मैथ्यू 15 की कनानी महिला। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बड़ी समस्या है। स्रोत में जो लिखा है वो समझना बहुत मुश्किल है।
आप किस हिस्से की बात कर रही हैं?
यीशु, जिन्हें हमेशा करुणा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वो मदद मांगने आई एक परेशान महिला की तुलना कुत्ते से क्यों करेंगे? मतलब ये तो सरासर क्रूरता लगती है। डॉक्टर कीनर्स इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं?
ये असहज करने वाला जरूर है, और इसीलिए ये पूरे ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। हमें यह समझना होगा कि उस संस्कृति में, यहां तक कि यूनानियों के लिए भी जो कुत्तों को पालते थे,
हाँ,
किसी को कुत्ता कहना एक बहुत ही गंभीर और गहरा अपमान था। यीशु वास्तव में क्रूर नहीं हो रहे थे।
तो फिर क्या कर रहे थे वो?
वे अपने आसपास खड़े शिष्यों के गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों को एक आईना दिखा रहे थे। वे उस महिला के सामने जानबूझकर एक ऐसी बाधा खड़ी कर रहे थे जिससे उसका सच्चा विश्वास उभर कर सामने आ सके। ये एक तरह की परीक्षा थी।
और उस महिला का जो जवाब था वो किसी भी इंसान के सोच से परे है। वो अपमानित महसूस करके वहां से रोती हुई भागी नहीं।
बिल्कुल नहीं।
उसने पलट के कहा कि कुत्ते भी तो अपने स्वामियों की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं।
हाँ, क्रम्स।
मतलब वो ये कह रही थी कि आपके चमत्कार इतने विशाल हैं कि मुझे उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही मेरे संकट को दूर करने के लिए काफी है। डॉक्टर कीनर ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार शब्द का इस्तेमाल किया है, होली चुत्सपा।
होली चुत्सपा, इसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र डिठाई या एक ऐसी जिद जो किसी महान उद्देश्य के लिए की जाए।
पवित्र डिठाई, मुझे ये फ्रेज बहुत पसंद आया।
यह महिला जानती थी कि उसे क्या चाहिए, और वो किसी भी सामाजिक तिरस्कार या अपमान को अपने और उस चमत्कार के बीच नहीं आने देना चाहती थी।
ये मुझे अंधा बार्टिमियस की याद दिलाता है। पूरी भीड़ उसे डांट कर चुप रहने को कह रही है, लेकिन वो हार मानने के बजाय और जोर से चिल्लाने लगता है।
बिल्कुल वही जिद।
या फिर काना के विवाह में यीशु की माँ का व्यवहार। यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन उनकी माँ उस इनकार को पूरी तरह से नजरअंदाज करके नौकरों की तरफ मुड़ती है और कहती है,
वो जो भी कहे बस वही करो।
हाँ, ये जो जिद्दी विश्वास है, ये समाज के बनाए हुए हर बाहरी नियम की धज्जियां उड़ा देता है।
और ये पवित्र ढिठाई सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं रही, इसने एक बड़े आध्यात्मिक बदलाव की नींव रखी। इसके तुरंत बाद हम 4000 लोगों को भोजन कराने की घटना देखते हैं।
7 टोकरियों वाला चमत्कार।
हाँ, यहाँ बचे हुए भोजन की 7 टोकरियों का विशेष उल्लेख है। इससे पहले जब 5000 लोगों को खिलाया गया था जो कि यहूदी थे, तब 12 टोकरियां बची थी जो इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतीक थी।
अच्छा, तो ये 7 टोकरियां किस बात का प्रतीक थी?
अब कनानी महिला की घटना के बाद 7 टोकरियां बचती हैं। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ये आध्यात्मिक रोटी अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर यहूदियों और पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध हो रही है।
उस स्रोत में एक और दिलचस्प डिटेल थी कि मैथ्यू ने केवल पुरुषों की गिनती की। लिखा है कि 4000 पुरुष थे और महिलाओं और बच्चों को नहीं गिना गया। आज के नजरिए से देखने पर कई लोग इसे पुरुष सत्तात्मक या महिलाओं को नजरअंदाज करने वाली सोच मानकर इसकी आलोचना करते हैं।
ये एक बहुत ही आम आधुनिक धारणा है, लेकिन डॉक्टर कीनर इसे ऐतिहासिक संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। ये कोई जानबूझकर किया गया द्वेष या महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास बिल्कुल नहीं था।
तो फिर ऐसा क्यों लिखा गया?
उस समय की सांस्कृतिक गणना का तरीका यही था। सार्वजनिक सभाओं में परिवारों का प्रतिनिधित्व पुरुषों के माध्यम से गिना जाता था। मैथ्यू के पास जो डेटा जिस रूप में उपलब्ध था उसने बस ईमानदारी से उसी को दर्ज किया।
ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब अगर हम कहानी के फ्लो को देखें तो एक बहुत ही गहरी विडंबना उभर कर आती है।
कैसी विडंबना?
बाहरी लोगों में, जैसे वो कानानी महिला, इतना गहरा विश्वास है कि वे हर सीमा लांघने को तैयार हैं, लेकिन जो लोग यीशु के सबसे करीब थे, जो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो अभी भी पूरी तरह से अंधे थे।
फरीसी आसमान देखकर मौसम की भविष्यवाणी तो कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने जो इतना बड़ा आध्यात्मिक तूफान खड़ा था,
उसके संकेतों को पहचानने में वे पूरी तरह विफल रहते हैं।
बिल्कुल, ये अंधापन वाकई हैरान करने वाला है। यीशु अपने शिष्यों को एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक के जरिए चेतावनी देते हैं, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो।
हाँ, खमीर का मतलब था उनकी भ्रष्ट शिक्षाएं और पाखंड।
और शिष्य इसका क्या मतलब निकालते हैं?
वे आपस में बहस करने लगते हैं कि यीशु इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि वे अपने साथ सचमुच की रोटियां लाना भूल गए हैं।
ये दर्शाता है कि भौतिक चमत्कारों को देखने के बावजूद उनकी आध्यात्मिक दृष्टि अभी तक नहीं खुली थी।
मतलब ये तो हास्यास्पद होने के साथ साथ बहुत दुखद भी है। उन शिष्यों ने अभी अभी अपनी आंखों के सामने 5,000 लोगों को 12 टोकरियां और 4,000 लोगों को 60 टोकरियां भरकर खिलाते हुए देखा है, और वे अभी भी इस बात पर परेशान हैं कि उनके पास खाने को भौतिक रोटी नहीं है।
सही कहा। इसी अंधता का इलाज करने के लिए यीशु ने सीजरिया फिलिपी ले जाते हैं। ये स्थान चुनना कोई संयोग नहीं था। ये एक मूर्ति पूजक शहर था जो विशेष रूप से पैन देवता और रोमन सम्राट की पूजा के लिए कुख्यात था।
उस अंधकार में पृष्ठभूमि में,
हाँ, वहां यीशु पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? और पीटर अंततः इकरार करता है कि वे मसीहा हैं।
लेकिन पीटर के इकरार के तुरंत बाद एक और अजीब बात होती है जिसे विद्वान मसीहाई रहस्य या मेसियानिक सीक्रेट कहते हैं। हाँ। ये यीशु पीटर को सख्त हिदायत देते हैं कि वो ये बात किसी को ना बताए। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर वे वास्तव में दुनिया को बचाने वाले मसीहा हैं तो ये बात तो पूरी दुनिया में ढोल पीट कर बताई जानी चाहिए थी, वे इसे छिपा क्यों रहे थे?
इसके पीछे पहली सदी के यहूदी समाज की राजनीतिक और धार्मिक उम्मीदें थी। अगर हम सालमोन के भजन 17 जैसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि यहूदी लोग एक ऐसे योद्धा मसीहा का इंतजार कर रहे थे।
मतलब एक वॉरियर मसीहा।
बिल्कुल, जो तलवार उठाएगा, रोमन साम्राज्य को युद्ध में हराएगा और इसराइल को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाएगा। लेकिन यीशु का मिशन एक पीड़ित मसीहा का था जो क्रूस पर जान देकर दुनिया को बचाएगा।
ओहो।
अगर वे खुद को सार्वजनिक रूप से मसीहा घोषित करते तो भीड़ उन्हें अपना राजा बनाकर एक हिंसक विद्रोह शुरू कर देती जो उनके वास्तविक मिशन के बिल्कुल विपरीत था।
इसे समझने के लिए मार्क के गॉस्पेल में दी गई अंधे आदमी को ठीक करने की घटना बहुत ही प्रासंगिक लगती है। यीशु उस अंधे आदमी को छूते हैं लेकिन वो एक बार में ठीक नहीं होता।
बिल्कुल, वो दोहरे स्पर्श की घटना वास्तव में शिष्यों की आध्यात्मिक स्थिति का सटीक प्रतीक थी। जब यीशु पहली बार उस अंधे आदमी की आंखों को छूते हैं तो वो कहता है कि लोग उसे चलते फिरते पेड़ों जैसे दिख रहे हैं।
मतलब उसकी दृष्टि आंशिक रूप से लौटी है।
हाँ, पीटर और शिष्यों की स्थिति भी यही थी। वे जान गए थे कि यीशु मसीहा हैं, ये पहला स्पर्श था, लेकिन वे मसीहा की असली प्रकृति को नहीं समझ पा रहे थे।
उन्हें अभी भी दूसरे स्पर्श की आवश्यकता थी
जो उन्हें यीशु के क्रूस पर छड़ने और पुनरुत्थान के बाद ही मिलने वाला था।
ये मैकेनिज्म बहुत ही स्पष्ट है। इसी बातचीत के दौरान यीशु पीटर को एक नई पहचान देते हैं। वे कहते हैं कि पीटर, जिसका अर्थ ही चट्टान या केफास है, वो चट्टान है जिस पर वे अपना एक्लेसिया यानी चर्च बनाएंगे।
हाँ, एक्लेसिया।
अब मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर कीनर ने एक्लेसिया शब्द को समझाते हुए अंग्रेजी शब्द नाइस का बहुत ही विचित्र उदाहरण दिया था। भला नाइस का मतलब अज्ञानी कैसे हो सकता है? ये तो कोई तुक नहीं बनता।
भाषा विज्ञान में इसे शब्दार्थ परिवर्तन या सिमेंटिक शिफ्ट कहते हैं। डॉक्टर कीनर ये समझाना चाहते थे कि शब्दों का अर्थ समय के साथ कैसे बदलता है। अगर आप नाइस शब्द की लैटिन जड़ें देखें तो मूल रूप से इसका मतलब वास्तव में अज्ञानी ही होता था।
अरे वाह, सच में?
हाँ, लेकिन आज अगर कोई आपको नाइस कहे तो वो आपकी तारीफ कर रहा है। उसी तरह कुछ लोग एक्लेसिया की जड़ों को देखकर कहते हैं कि इसका मतलब बुलाए गए लोग हैं। लेकिन पहली सदी में ग्रीक भाषी दुनिया में इसका व्यावहारिक अर्थ एक सार्वजनिक सभा या नागरिकों की बैठक होता था।
मतलब यीशु ये कह रहे थे कि वे एक नई सार्वजनिक सभा, एक बिल्कुल नए समाज का निर्माण करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, एक नया समाज
जिसकी नींव वो चट्टान यानी पीटर था। लेकिन कहानी यहाँ सबसे बड़ा और झकझोर देने वाला मोड़ लेती है।
हाँ, पीटर का वो रिएक्शन।
पीटर उस नए समाज की चट्टान तो बन गया, लेकिन ये उपाधि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही यीशु बताते हैं कि उन्हें यरूशलम जाकर कष्ट सहना होगा और क्रूस पर मरना होगा, पीटर उन्हें किनारे ले जाकर डांटने लगता है, कि प्रभु ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ये समझ नहीं आता, पीटर तो सिर्फ अपने गुरु की जान बचाना चाह रहा था, इसमें शैतानी क्या है? एक ही पल में आप रॉक हैं और दूसरे पल में सीधे शैतान।
यीशु की ये कठोर प्रतिक्रिया उनके मिशन की गहराई को दर्शाती है। इसे समझने के लिए हमें वापस अध्याय 4 में जाना होगा, जब शैतान ने रेगिस्तान में यीशु की परीक्षा ली थी।
अच्छा, वहाँ क्या हुआ था?
शैतान ने यीशु के सामने क्या प्रस्ताव रखा था? उसने दुनिया के सारे राज्यों और उनकी महिमा का प्रस्ताव रखा था, वो भी बिना किसी कष्ट सहे। यानी एक ऐसा राज्य जिसमें कोई क्रूस न हो, किंगडम विदाउट द क्रॉस।
ओ, अब समझी।
पीटर अपने गुरु के प्रति प्रेम के बावजूद अनजाने में वही शैतानी विचार फिर से सामने रख रहा था, सफलता बिना किसी बलिदान के।
अगर हम अपनी उस EMI और कंफर्ट जोन वाली उपमा को वापस लाएं, तो ऐसा लगता है कि पीटर उसी कंफर्ट जोन में वापस जाना चाहता था। वो नाव से बाहर तो आ गया था, लेकिन वो बिना किसी जोखिम, बिना कोई कीमत चुकाए सीधा दुनिया जीतना चाहता था। उसे एक विजयी राजा चाहिए था, एक पीड़ित मसीहा नहीं।
ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और यहीं पर यीशु स्पष्ट करते हैं कि शिष्यता की असली कीमत क्या है। अपना क्रूस खुद उठाना,
मतलब
इसका सीधा सा मतलब है कि अपने इस भौतिक जीवन, अपनी इच्छाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के जीवन यानी इटर्निटी के लिए दांव पर लगा देना। सफलता का अर्थ अब इस दुनिया में जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहना था।
डॉक्टर कीना ने इस बात को समझाने के लिए प्लेटो के दर्शन और अपने खुद के अनुभव का जो उदाहरण दिया है, वो सच में बहुत ही विचार उत्तेजक है।
हाँ, वो कैलकुलस वाले छात्र का उदाहरण।
हाँ, वे एक छात्र का जिक्र करते हैं जो अपने कैलकुलस के टेस्ट में फेल हो गया था, और उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। तब डॉक्टर कीनर ने उससे पूछा, एक साल की ये विफलता और अनंत काल, इन दोनों में क्या ज्यादा मायने रखता है? अगर हम प्लेटो के नजरिए से समझें कि जो हमेशा रहने वाला है केवल वही सबसे मूल्यवान है, तो इस जीवन में हम जो भी करते हैं उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है।
ये सच है कि अनंत काल के चश्मे से देखने पर हमारे जीवन की प्राथमिकताएं पलट जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस वर्तमान जीवन और इसकी समस्याओं को अनदेखा कर दें।
हाँ, बिल्कुल नहीं।
इसके विपरीत, जब हम अनंत काल के नजरिए से जीते हैं, तो वर्तमान जीवन में लोगों की भलाई करना, जैसे भूखों को खाना खिलाना या बीमारों की सेवा करना, एक गहरा और शाश्वत अर्थ ले लेता है।
प्रारंभिक ईसाइयों ने इस दर्शन को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा था। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि ये जीवन उन्हें सिर्फ उधार मिला है। स्रोत में दूसरी शताब्दी के एक महान विद्वान टर्टुलियन का एक बहुत ही शक्तिशाली कोट दिया गया है,
द ब्लड ऑफ मार्टियर्स।
हाँ, शहीदों का खून चर्च का बीज है। उन प्रारंभिक ईसाइयों को पता था कि मौत कोई पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े शाश्वत उद्देश्य की शुरुआत है। क्रूस से बचने का मतलब है उस अनंत जीवन के बीज को ही नष्ट कर देना।
अगर हम आज की इस पूरी लंबी चर्चा को समेटें, तो हम देखते हैं कि ये गहन अध्ययन हमें किस दिशा में ले जा रहा है। ये सिर्फ पानी पर चलने के चमत्कार या प्राचीन नियमों के बारे में नहीं है।
तो ये किस बारे में है?
ये हमें चुनौती देता है कि हम अपनी अंध परंपराओं को तोड़ें। जब न्याय और करुणा की बात आए, तो उस कनानी महिला की तरह होली चुत्सपाह के साथ हर सामाजिक बाधा का सामना करें, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे मिशन के लिए खुद को समर्पित करें जिसका प्रभाव शाश्वत हो, भले ही इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े।
हमने शुरुआत की थी एक धुंधली होती हुई एक्सरे मशीन के रूपक से। प्राचीन ग्रंथ कोई साफ कटी छटी तस्वीर नहीं देते, वे हमें एक बहुत ही तीखा आईना दिखाते हैं।
बिल्कुल।
और जब हम उस आईने में अपनी आज की दुनिया को देखते हैं, तो एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है। सोचिए, अगर उस समय के सबसे ज्ञानी लोग, फरीसी जो नियमों और शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, और यहां तक कि यीशु के अपने सबसे करीबी शिष्य भी असल सच्चाई को पहचानने में पूरी तरह अंधे साबित हुए, तो आज हमारे समाज में ऐसे कौन से स्थापित नियम, विशाल संस्थाएं या बुजुर्गों की परंपराएं हैं जिनका हम आंख मूंद कर पालन कर रहे हैं? ऐसे कौन से नियम हैं जो बाहर से तो पवित्र दिखते हैं, लेकिन वास्तव में मानवीय करुणा और प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? क्या हम भी आज सिर्फ मौसम देखकर तूफान का अंदाजा लगा रहे हैं और बदलाव की असली आहट को अनसुना कर रहे हैं? कुछ ऐसा जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए।